एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरण करुणा में सब दुख हरो हे शरण जो दयाले दीनानाथ माया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे गुरु सत्संग जी फतेह कबूल करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक अंदाजे दे मुताबक 90% लोग दुख दी चोट खा के ही धर्म दे मार्ग ते चल रहे उंज नहीं 10% ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਚਿੰਤਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਵਨ ਗਹਿਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗਹਿਰੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਕਤਵ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਜੋ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਵੀ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸਰੋਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਤੋ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਹਿਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਿਨਾਂ ਚੋਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ ਤਬਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰਬ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਿਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਗਮਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਬਿਨਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਚੋਟ ਖਾਦਿਆਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਚਾਹੇ ਅਕਲ ਸਮਝ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਚਾਹੇ ਸਤਸੰਗੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਿਕਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਜੋ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਖੇਡ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਆਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਚੋਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਥਾਪ ਵਜਾਈ ਜਾਣਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਟ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਵਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 90% ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾਕੇ। ਮਾਮੂਲੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਗਤ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀ ਜਗਤ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰੋਗ ਹੈ ਮਨ ਸੋਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਤਨ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਓ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੋਗ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤਨ 'ਤੇ ਰੋਗ ਹੈ, ਮਨ 'ਤੇ ਸੋਗ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਰੋਗ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਔਸ਼ਧੀ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੀਜਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਕਿਤੇ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਸਹਿਮਤ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਨ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਅਨਸਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਰੋਗ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਰੋਗ ਵਧੇਗਾ ਵਧੇਗਾ। ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਬਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ, ਭਜਲੇ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਤਨ ਰੋਗ ਹੈ, ਮਨ ਸੋਗ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਚਿੰਤਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਤਨਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਤਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਸੋਗ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਦਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜੀਵਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਤਨ ਉਬਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸੂਫੀ ਸਨ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਡਾਲਿਆ। ਸੁਣ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੀਆਂ, ਛੋਡੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਮ ਸੇ, ਕਿਆ ਹੁਆ ਤਨ ਤਪ ਗਿਆ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਸੇ। ਤਨ ਤਪਦਾ ਪਿਆ, ਤਨ ਜਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜੀਵਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜੀਵਦੇ, ਪਸ਼ੂ ਤਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜੀਵਦੇ ਨੇ, ਮਨੁਸ਼ ਮਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜੀਵਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜੀਵਦੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਲ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਤਨ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਜੀਵਦਾ, ਤਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਗ ਚਿੰਤਾ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਫਿਕਰ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। चिंता भी नहीं है, सोग भी नहीं है। इस वास्ते थानू पशु कदी पागल होंदे भी नहीं मिलणगे। हाँ, वह पशु जरूर पागल हो जाते ने जिन्हां विचारियां नूं मनुखां दे नाल रहना पैंदा है, ते मनुख उन्हां दी प्राकृतिक जिंदगी च फर्क पा देंदा है, वह पागल हो जाते ने, वरना नहीं होंदे। सोग ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, समय का बोध ही नहीं है, तो तन दे तल ते जी रहा है। मनुष्य मन दे तल ते जी रहा है, इस वास्ते तन दे रोग दे नाल नाल मन का सोग भी है, कुल चिंतावां भी ने, फिक्र भी है, भूतकाल दियां यादां का बोझ भी है, भविष्य दियां चिंतावां का बोझ भी है, मनुख कोल है। जिन्हों असी संत कहिंदे आ, भगत कहिंदे आ, तन तो ते उच्चा उठ गया, मन तो भी उच्चा उठ गया। इसे नूं सतगुरु कहिंदे ने रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने। क्या उन्हां दा तन रोगी नहीं होंदा? होंदा, अगर रोगी ना होवे तो तन नास ही नहीं हो सकता, रोग ही नास करदा। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी भयंकर रोगी देखे गए ने शरीर दे तल ते। सिख जगत विच महान ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा अतर सिंह जी, सप ने डंग मारे बठिंडे की गल, खैर शरीर ते बच गया सप की जहर तो, पर एक लत गल गई, बड़ा जख्म होया, ठीक भी नहीं आता, बड़ी मरम पट्टी रोज होंदी रही। ते आखिर डॉक्टरों नूं संत जी ने कह दिता, कोई नहीं, इस रोग नाल रहना पैना, हो सकता है कर्म रोग होवे, भोगना पैंदा। स्वामी राम कृष्ण परमहंसम बंगाल दे महान महात्मा, गले दा कैंसर से उन्हां नूं, खा भी नहीं सकते सन कुछ, सिर्फ दुध पींदे सन, 4 साल गले दा कैंसर रहा। कृष्णा मूर्ति तमिलनाडु दे एक महान संत, इन्हां नूं भी कंठ दा ही कैंसर सी और काफ़ी पीड़ित रहा, लेकिन ये पीड़ा उन्हां नूं महसूस नहीं आती सी, कारण तन ते मन दोहां तो उच्चे उठ गए। संत अतर सिंह भी इस तरह सन, तन दे तल ते जीवदे ने पशु, मन दे तल ते जीवदे ने मनुष्य, आत्मा दे तल ते जीवदे ने संत। इस सत्संग इस वास्ते होंदा है, इन्हां दोहां तो उच्चे उठ गए, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटाने। अगर रोग नहीं तो उन्हां दा तन नाश नहीं होना चाहिए, नहीं वह तन तो उच्चे उठ गए, इस वास्ते रोग की पीड़ा ने, वह मन तो उच्चे उठ गए, इस वास्ते चिंता फिक्र सो नहीं, इस तो अगे लंघ गए आत्मा दा तल। इस मंजिल की तरफ वो चलेगा जिन्हों कोई गहरे दुख की चोट लग जाए, अपनी समझ की चोट लग जाए, या सत्संग विच गुरु दे शब्द की चोट लग जाए, इस तो पहले नहीं। धन गुरु रामदास जी महाराज फरमान करते ने, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुरु बचन मन तीर लगैया। गुरु का शब्द की सुनया है, ये तीर की तरह लगे, तीर तन नू लगे, खून निकलता है, तन तड़पदा है, ते तड़पदा होया मनुख करता है हाय पानी हाय पानी हाय पानी। खून दे निकलन नाल कंठ खुश्क हो जाता है और तड़पदा होया मनुख पानी मंगता है। तीर तन नू लग जाए ते तन छलनी हो जाए, तड़पदा होया तन, उहदी जबान चो बोल निकलदे ने हाय पाणी हाय पाणी। गुरु दे शब्द दा तीर मन नू लग जाए, मन छलनी हो गए, मन दे चो निकलदा है लोभ, मन दे चो निकलदी है वासना, है मन दा खून है, किसी दे आसरे ते मन जिंदा है। मन दे चो निकलदे ने विकार, ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਤੜਪਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੈਸੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ, ਸੁਣ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ। ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੋਂ ਪਿਆਸ ਤੇ ਖੋਜਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਦੀ ਗਿਆਤਲੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਟਕ ਗਏ, ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਬਣਾ ਲਏ। ਭੋਜਨ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣ ਗਏ, ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਏ। ਪਦਾਰਥ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਲੋਭ ਬਣ ਗਏ। ਪਦਾਰਥ ਮਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਮਨ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮਨ ਆਪਣਾ ਲੋਭ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਲੋਭ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਏਗਾ, ਦੋ ਖਾ ਲਏਗਾ, ਚਾਰ ਖਾ ਲਏਗਾ, ਛੇ ਖਾ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਜਦ ਮਨ ਉਸਨੂੰ ਸਵਾਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਦ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਲੋਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਦਾਰਥ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਲੋਭ ਬਣ ਗਏ। ਭੋਜਨ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਲੋਭ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਬੈਰੂਨੀ ਸਿਰਫ ਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੋ ਮਨ ਬੜਾ ਬੋਝਲ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬਣਾ ਲਈ, ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਪਿਆਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਨ ਦੇ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮ ਅਨੁਭਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ, ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਨ ਤੜਪਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਆਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਹੁਤੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਪੂਰਨ ਤੜਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਖਿੱਚਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੇ, ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਹੀ ਜੀਵਨ। ਪਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਸਰੀਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਫਲ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਪੂਰਾ ਪੱਕ ਜਾਏ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਲੈ ਲੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੈਥੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੋਦ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ ਪੱਕਣਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਕੜਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਛੁੱਟਣਾ। ਫਲ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਪੱਕਦਾ ਛੋੜਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਪੱਕਦਾ ਪਕੜਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਠੀਕ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਚੇਤ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਯਾਤਰਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਕੜ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਾਭ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਜੇ ਨਫ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੇ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਆ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ, ਸੁਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤੀਰ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਲੋਭ ਨਿਕਲਦਾ। ਲੋਭ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਲੋਭ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਲੋਭ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੋਈ ਸੰਤ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਭ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਲੋੜ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਖੰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਭੋਜਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਮਨੁੱਖ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਜਤਨ ਕਰੇ ਬਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਮਨੁਆ ਡੋਲੇ ਨਰਕੇ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਵੇ, ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਦਬਾਵੇ, ਦਬੇਗੀ, ਵਧੇਗੀ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਵਧੇਗੀ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਤਨ ਕਰੇ ਬਿੰਦ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਮਨੁਆ ਡੋਲੇ ਨਰਕੇ ਜਾਏ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ, ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਮਿਟੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਮਿਟੇਗੀ, ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਟੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਖੰਡੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਲੋਭ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਭ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਭ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੀਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਤਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਤਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਰੋਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਇਤਨਾ ਲੋਭ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਸੇ ਰੋਗੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਐਸੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ, ਸੁਨ ਗੁਰ ਵਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ। ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਅਵਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕੋ ਪੀਰ ਪਰੇ। ਤੀਰ ਤਨ ਨੂੰ ਲਗੇ ਤਨ ਤੜਪਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗੇ ਤੇ ਲੋਭ ਜਦ ਨਿਕਲਦਾ ਮਨ ਵੀ ਤੜਪਦਾ, ਬੜਾ ਭਿਅੰਕਰ ਤੜਪਦਾ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂਡਤ ਸਰਪ ਗ੍ਰਸੇ, ਸਸਤਰ ਅਨੇਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਗਾਤ ਹੈ। ਜੀਵਦਾ ਜਾਗਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂਡਤ, ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਗੋਥੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂਡਤ ਸਰਪ ਗ੍ਰਸੇ, ਕੋਬਰੇ ਨਾਗ ਨੇ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੀੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਦ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਪੀੜਾ, ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੀੜਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਪੀੜਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣੇ, ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਪੀੜਾ, ਮਨੁੱਖ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂਡਤ ਸਰਪ ਗ੍ਰਸੇ, ਸਸਤਰ ਅਨੇਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਘਾਤ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇ, ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇਤਨੀ ਪੀੜਾ, ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂਡਤ ਸਰਪ ਗ੍ਰਸੇ, ਸਸਤਰ ਅਨੇਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਘਾਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ ਅਪਦਾ ਅਧੀਨ ਦੀਨ ਗਤ, ਗ੍ਰੀਖਮ ਔਰ ਸੀਤ ਬਰਖਮਾਏ ਨਿਸਪਰਾਤ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ। ਅਪਦਾ ਅਧੀਨ ਦੀਨ ਗਤ, ਸਰੀਰਕ ਬੜੇ ਭਿਅੰਕਰ ਰੋਗ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਪਰਾਈ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਸਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਮਜਬੂਰੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਰਨ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਲਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਅਗਲਾ ਤਾੜਨਾ ਕਰੇ। ऐसी हालत दे जो मानसिक संताप पैदा होता है, भाई जी कहते हैं वह भी इकट्ठा करिए। बिरथा अनेक अपदा अधीन दीन गत, ग्रीखम और सीत बरखमाए निष्प्रात है। गर्मी तो सर्दी तो बरसात तो बचण का कोई उपराला ना हो, दिन रात गर्मी च रहना पवे, दिन रात सर्दी दे च रहना पवे, दिन रात बारिश दे च रहना पवे, बचण का कोई उपराला नहीं। तीसरी पंक्ति, गऊ दिज बधु बंस विश्वास बद कोट हत्या त्रिशना अनेक दुख दोख समगात है। गऊ दी हत्या करे, किसी भगत नू मारे, गुरद्रोही बने, कुल दा घातक होवे, अनेकां तरह की त्रिशना होवे, इस तरह के पापां दे नाल जो मानसिक संताप पैदा हो जाता है, भाई जी कहिंदे ने इह वी इकट्ठा करिए। हर पाप मानसिक पीड़ा दे जाता है, इस चक्कर च ना पैना, पापी मौजां उड़ाते हैं, कतई मौजां नहीं, एवें एक एक बोतल शराब दी इस वास्ते पी लेंदे ने, पाप ने अंदर मानसिक संताप वधा दिता है, पीड़ा वधा दिती, पीड़ा नू भुलाउण वास्ते पींदे ने, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, पाप ते संताप पैदा कर देंदा, पीड़ा पैदा कर देंदा। गऊ दिज बधु वंश विश्वास बद कोट हत्या त्रिष्णा अनेक दुख दोख समगात है। चौथी पंक्ति भाई गुरदास जी की, अनेक प्रकार जोर सगल संसार सोदे, संसार दे सारे जिहड़े दुख ने भाई जी कहिंदे ने मैं इकट्ठे करके देखे। अनेक प्रकार जोर सगल संसार सोदे, पिया के बिछो पल एक ना पुजाता। परमात्मा दे विछोड़े दी जिहड़ी एक पल दी पीड़ा जो पैदा हो जाती है, इस सारी पीड़ा एक पल की तुलना से भी नहीं है। हुण तुसीं अंदाजा लगाओ भगत कितनी पीड़ा चो लंघ गए, कितने वड्डे संताप तो लंघते हैं। इस वास्ते गुरु रामदास जी कहिंदे ने, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर पर दूजा की जाने। कबीर भी कहिंदे ने, लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणियाले तीर। राम दी भगती दा अणियाला तीर लगे, पर ये ओही जाने जिनू लगे होवे ती। लागी होए सो जाने पीर, राम भगत अणियाले तीर। कबीर एक अवस्था भी बयान करते ने, तीर लग गया तो होंदा की है, फिर हो की जांदा। एक श्लोक दे च ये भी बयान किया है भगत कबीर ने। कबीर कहिंदे ने, गूंगा हुआ बाबरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरवान। ऐसा बाणी दा बाण लगे है, गूंगा हो गया भाव। हुण मैं मिथ्या नहीं बोलदा, हुण मैं व्यर्थ नहीं बोलदा, हुण मैं कौड़ा नहीं बोलदा, हुण मैं फिक्का भी नहीं बोलदा, पर हुण जिहड़ी उस बाण दे लगण नाल पीड़ा होई है, वह भी मैं नहीं बयान कर सकता। पर इस पीड़ा दे च जिहड़ा मैनू रस आया, इस पीड़ा दे भयंकर पीड़ा, इस पीड़ा दे जिहड़ा मैनू रस आया, मैं भी नहीं बयान कर सकता, गूंगा। तुसी आखोगे पीड़ा च रस, इक्को ही पीड़ा है, बड़ी भयंकर पीड़ा है, सब तो वड्डी पीड़ा है, पर रस भी है। कुछ भगतां ने तो इंज कह दिता है, नहीं मिलता तो तू ना ही मिल, कम से कम यह पीड़ा ही रहन दे। अमीर खुसरो कहिंदा, या रब दुआए वसल ना हर गिस कबूल हो। हर वक्त मैं कहना तू मिल, तू मिल, तू मिल, फरियाद करदा, मैं तड़पदा, कहिंदा खुदा मैनू मिली ना, ना मिली। या रब दुआए वसल ना हर गिस कबूल हो, फिर दिल में क्या रहेगा जो हसरत निकल गई। कोई नहीं तड़पण दे, पीड़ा दे च भी इक रस है। कबीर कहिंदे ने, गूंगा हो गया, मैं नहीं दस सकता उस पीड़ा नू, नहीं दस सकता मैं उस रस नू, भी नहीं दस सकता, गूंगा हो गया, मैं मिथ्या भी नहीं बोल सकता, मैं कौड़ा भी नहीं बोल सकता, मैं फिक्का भी नहीं बोल सकता, मैं व्यर्थ भी नहीं बोल सकता, गूंगा हो गया। गूंगा हुआ बावरा, बावरा कहते हैं भोले नो। ते भोले दे अर्थ की करोगे? मूर्ख नादान नहीं, भोले दे अर्थ ने जो भावना नाल भर गया, भरोसे नाल भर गया। हर एक ते भरोसा करता है, भावना नाल भरया। भोले दे ए अर्थ नहीं जो अक्सर पंजाब दिस कर ले जांदे। भोले दे मुकाबले ते मुखालफ जिहड़ा शब्द है चलाक। चलाक बंदा बाहरों कुछ होर होंदा है, अंदरों कुछ होर होंदा है। भोला अंदरों बाहरों एक होंदा है, बस इन्नी गल। फिर भोले नूं मूर्ख क्यों आख्या गया? इस वास्ते आख्या गया, गुस्ताखी माफ। चलाक बंदा ठग ते सकदा है, ठगा नहीं सकदा। भोला बंदा ठगा ते सकदा है, ठग नहीं सकदा। पर मैं अर्ज करा, हजार दफा ठगान दे नाल मनुख दी अध्यात्मक पस्ती इतनी नहीं आउंदी जितनी कि एक दफा किसी नूं ठग लैण नाल हो जाती। मनुख इतना गिर जाता एक दफा किसी नूं ठगण। चलाक बंदा ठग ते सकदा है, ठगा नहीं सकता, चलाक है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चलाक मनुख नूं मनुख ही नहीं मनदे। औरंगजेब नूं कहिंदे ने, हमू मर्द बायत शबद सुखनवर, न शिकमे दिगर दर दहाने दिगर। असी मर्द मनुख नूं उसनू मनदे हैं जो दिल दे च है, ओही जबान दे च है, जो जबान दे च है ओही दिल दे च है। तू बड़ा चलाक है, तेरी जबान ते कुछ होर है, तेरे दिल दे च कुछ होर। तू चलाक है। इस वास्ते पता अगे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की कहंदे ने, अगर सतगुरां बहुरी कसम, मरा एतबार न यक जर्रा दम। एक नहीं, तू सौ कसमां भी कुरान दियां खावे, हो सकदा तेरे ते कोई भरोसा करे। मैं नहीं कर सकदा, तू मनुख नहीं है, चलाक है। मैं चलाक बंदे नूं मनुख ही नहीं मनदा। गुरु गोबिंद सिंह भगत कबीर कहते ने, चतराई न चतर भुज पाईए। चलाक बंदा चतर भुज की प्राप्ति नहीं कर सकता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। हाँ, संसार वेच बहुत कुछ हासिल कर सकता, सिंघासन हासिल कर सकता, भोले बंदे नहीं हासिल कर सकते। पब्लिक नूं ठग ही नहीं सकते, जनता नूं ठग ही नहीं सकते। असी यह कर देंगे, असी यह कर देंगे, असी यह कर देंगे, सारे दे वोट ले लो। ये करना कुछ भी नहीं, जो कुछ भी करना है अपने वास्ते करना है। किसने देश वास्ते करना है, किसने कौम वास्ते करना है। चलाक बंदा ठग सकता है, ठगा नहीं सकता। भोला बंदा ठगा ते सकता है, ठगा जाएगा, क्योंकि भरोसा जो करता है कि भरोसे करके ठगाएगा। शेख सादी ने कहानी लिखी है, लंबी चौड़ी मुख्तसर में भाव ही रख दें थोड़े सामने। मुनसफ की कचहरी एक ने फरियाद की थी, फलाने ते मैं बड़ा भरोसा किया, उन्हें मैंने ठग लिया। मुनसफ ने उसनों पकड़ के अपनी कचहरी च बुलाया। ते मुनसफ पहला ही सवाल करता है, भाई इस बंदे ने तेरे ते इतना भरोसा किया, तू इन्हें भी ठग ले। पता वो की कहता है मुनसफ, तेन इतना भी नहीं पता, जे भरोसा ना करता तो मैं ठगदा किस तरह? मैं ठग सकता? मैं ठग ही नहीं सकता, तेनों इतना भी नहीं पता। चतराई ना चतर भुज पाईए, चलाक बंदे नू चतर भुज की प्राप्ति नहीं आती। चतराई ना चतर भुज पाईए, रे जन मन मोदो सें लाइए। कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रग। परमात्मा भोले भा नाल मिलदा, भोला अंदरों बारों एक है। साडे देश दे एक महान योगी शिव जी नूं कहिंदे ने, भोले शंकर भोले नाथ भोला भोला, वे बड़ा भोला। एक ठग नूं भी वर दे दिता, सेवा करदा सी पर हैगा ठग सी, उहदी निगाह ठीक नहीं सी। उहदी निगाह पार्वती ते सी, शिव जी ते नहीं सी। वो एक तरीके नाल पार्वती दा तलवगार सी, शिव जी दा नहीं सी। एक दिन कहन लगा शिव जी नूं, थोड़े लई बसम लैणी पैंदी है क्योंकि तुसी तन ते मलदे, लभणी पैंदी है, मैनू वर दे दो। मैं जिस चीज ते हाथ रखा वो भसम हो जाए, थोड़े वास्ते फौरन ले आया करा। शिव जी ने दे देता, वर दे देता। कहन लगा हूं मैं पहले थोड़े ही सिर ते हाथ रखना है। ये भसमा सुर से शिव जी भजे, लै इनू वर दे दिते तो मैनू भसम करन लगा। बिष्णु ने बचाया। बिष्णु ने कहे तुसी बड़े भोले, ठग नू वर दे दिता, पर है जो बोला बोला शंकर, हर एक ते भरोसा करता है। भावना नाल भरिया होया मनुख, भरोसे नाल भरिया होया मनुख ठगा सकता है, ठग नहीं सकता। चलाक बंदा ठग सकता है, ठगा नहीं सकता। कबीर कहते ने कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रग राया। परमात्मा भोले भाव नाल मिलता है, चलाकियां नाल जो है नहीं मिलता। हाफिज कहते ने सद जां फिदाए आंके जबानश दिलश यकेस्त। ईरानी सूफी संत, हजारां जिंदड़ियां उस बंदे तो कुर्बान कीतियां जा सकदियां ने जिहड़ा अंदरों बाहरों एक है। जो जबान दे च है वही दिल दे च है, जो दिल दे च है वही जबान। कई दफा जबान हां कर रही आउंदी, अखां ना पईं करदियां। जबान नाल कहिंदा है मित्रा तैनू मिलके बड़ी खुशी होई है, अखां कह रही ने कमबख्त कित्थों मिल गया, बड़े जरूरी काम ते जा रहे सी, वक्त जाया करेगा, समा जाया करेगा। ये चलाक बंदियां दे काम। जिन मन होर मुख होर बाबा फरीद, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचया, हजार जां फिदाए आंके जबानश दिलश यकेस्त। कबीर कहंदे भोला हो गया, गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, कन्ना तो बहरा हो गया। हुण मैं व्यर्थ सुनदा भी नहीं, हुण मैं बिखे नाद सुनदा भी नहीं, हुण मैं चिंग चुगली ते निंदा सुनदा भी नहीं। गल खत्म, बहरा हो गया, नहीं सुनदा। मैं सुनना भी बंद कर दिया। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण, ऐसा बाण बाणी दा लगे है पैरां तो पिंगला हो गया। गल मन दी है तन दी नहीं। स्वामी रामानंद एक शब्द है बड़ा कीमती धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर, कथ जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चलत मन भयो। किहड़े पासे जावां? स्वामी रामानंद कहिंदे ने मन पिंगला हो गया, भटकना मिट गए, भटकना मिट गए। कथ जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चलत मन भयो पंग। पिंगला हो गया मन, पंग हो गए, भटकना मिट गए। कबीर कहिंदे ने पैरां तो पिंगला हो गया, भाव मन पिंगला हो गया, भटकना मिट गए। गालिब ने भी इसनों अपने अंदाज दे बयान किया है और वाकई काबले सुनई दे, बड़े कीमती बोल ने इस शायर दे। कहिंदा है मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, ये जो मेरे पैर टूट गए कामनावां दे इच्छावां दे वासनावां दे, चंगा होया, चंगा होया। इन्ना टूटे हुए पैरां दा मेरे ते बहुत वड्डा एहसान है। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। गल में समझ लईए समझावां कि मैं गूंगा हो गया, भटकना मिट गई, चाहत मिट गई, तलब मिट गई, मन पिंगला हो गया। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। तो मैं अर्ज करा, चल पैंदी उस मनुख दी सुरत जो किधरे दुख दी चोट खा जांदा है, अपनी समझ दी चोट खा जांदा है, या संगत विच गुरु दे शब्द दी चोट खा जांदा है। बिना चोट खादे खेड नहीं बनेगी, नहीं बनती। बिना जरब पहुंचाए सितार ही नहीं बोलते। इसनु उस्ताद जौक इंज बयान कर देने, जख्म जब भी कोई जहनो दिल पे लगा, जब भी कोई चोट मैनू लगी, जख्म जब भी कोई जहनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। कहिंदा हर चोट ने मैनू नवा रस्ता दिता है, हर दुख ने मैनू नवा मार्ग दिता है। तो मैं दुख नू दुख किवें कह देवां? गुरु नानक ने दुख नू दारू कह दिता है, दुख दारू बड़े रस्ते खोलदा है। तो मैं फिर अर्ज करा, बिना दुख दी चोट तो खाए तो कोई परमात्मा दे मार्ग ते भी नहीं चलदा। एक वाहिद अवतारी पुरश ने धन गुरु नानक देव जी महाराज दुख नू दारू कह रहे हैं, दुख दारू। सुख सुख ते रोग बन जाते हैं, सुख आयास बना देंदा है, सुख हंकारी बना देंदा है, सुख आलसी बना देंदा है। बहुते सुखियारे बंदे ते दोपहर नूं उठदे ने, उस तो पहले नहीं। जख्म जब भी कोई जहनो दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला। हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। बिना चोट खादिया जबान चो वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं निकलता, नहीं निकलता। अगर वाहिगुरु वाहिगुरु जपना ये प्यास दे चो रहा है, प्यास है ते पानी पानी कर रहा है, पीड़ा है तीर लगे है शब्द दा ते वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, ऐसे मनुख दी सुरत कर्म कांड तो अगे चली जाएगी, शरा तो अगे चली जाएगी। ऐसा मनुख शरे ही नहीं होवेगा। जैसे इत्थों दिल्ली जाना है तो अगला मेरे को पूछे अलवर छोड़ना ना पवे तो दिल्ली पहुंच जाइए, कोई ढंग दसो है? कोई ढंग है? कोई ढंग? कर्म कांड छुट्टे ना, धर्म खंड छुट्टे ना, तो ज्ञान खंड देश पहुंच जाए? कोई ढंग छुट जाता। जवानी दे आउंदिया बचपना आपे ही चला जाता, बुढ़ेपे दे आउंदिया जवानी रुखसत हो जाती है। ज्ञान कांड दे प्रगट होंदिया कर्म कांड चढ़ जाता, चढ़ जाता अपने आप चढ़ जाता। वो मैंने नहीं रखता, लेकिन मैं फिर भी अर्ज कर दिया, जिहड़ा इस मार्ग ते चलिया नहीं उहदे वास्ते ते कर्म कांड पहले है। ठीक है, बड़ा चिंतक है, बड़ा फिलोसफर है, बड़ी समझ है, पर शुरू ते उड़े अड़े तो कीती सी ना, काखा तो शुरू कीती सी, अलबे तो शुरू कीती सी, ये भी तो शुरू कीती सी ना। भावें अज बड़ा पंडित है, भावें अज काखा पढ़न की लोड़ नहीं है, उड़ा एड़ा पढ़न की लोड़ नहीं, पर किसे वक्त सी, किसे वक्त सी। ते दसवीं दे विद्यार्थी नो जबरदस्ती पकड़ के आखिए पहली च बैठ, जिहड़ियां किताबां पढ़ चुके हैं फिर पढ़, जिहड़ी तख्ती तो लिखदा रहा फिर लिख, किन्नी पीड़ा होवेगी उहदे वास्ते, ते सब बेमैनी उहदे छुट गया, कर्म कांड छुट जांदा अपने आप छुट जांदा। आम मनुखां दी धार्मिक बोल चाल तो भी पता चल जांदा है कर्म कांड कर्म कांड ही है कि ज्ञान कांड ही है, पता चल जाता। धर्म खंड तो मुराद इतनी है उदा शरीर मर्यादा दे चे, मन ते बेमर्यादा, मन मर्यादा दे चे नहीं। अजे मन दी कोई यात्रा भी आरंभ नहीं हुई, अजे मन चलिया भी नहीं, लेकिन सत्संग विच आउंदे आ अपने आप नू मर्यादा च रखदे आ, जिस दिन शब्द दी चोट मन खा जांदा है चल पैंदा है मन। दूसरे पड़ाव दा नां सतगुरां ने ज्ञान खंड रखे। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म। महाराज कहिंदे मैं ज्ञान खंड दी अवस्था बयान करन लगा, केते पौण पाणी बैसंतर केते कान है। महाराज कहते कई तरह की हवा है, उन्हें पता चल जाता एक तरह की पवन नहीं है, इस जमीन के उत्ते भी एक तरह की पवन नहीं है। कई दफा शरीर किसी का एक जगह पर ठीक नहीं आता, उन्हें वैद भी कह देंगे ने आबो हवा बदल ले, पानी बदल ले, हवा बदल ले। हर जगह की हवा एक सार नहीं है, इको जैसी नहीं है, हर जगह का पानी इको जैसा नहीं है। अनंत धरतियां ने, बेशुमार धरतियां ने, उसनों पता चल जाता है केते पौन पानी बै संतर केते कान महेश। श्री कृष्ण जैसे अवतार, चूंकि अनंत धरतियां ने, ते हर धरती च कोई ना कोई अवतारी पुरुष आउंदा। महाराज कहते कितने अनंत, कबीर भी कहते हैं। मैं फिर अर्ज करा, हो सकता है कर्मकांडी नूं कुछ चोट लगे, पर गिला कबीर ते कर लेना, मेरे ते ना करना। मैं कबीर दे बोल थानू सुना लगा। कबीर दी सुरत जद ज्ञान कांड विच पहुंची है, वो कहिंदे ने कोट सूर जाके परगास, कोट महादेव अर कवलास। मैं करोड़ां सूरज वेख लिया, पहले दसो ते सही केड़े सूरज नूं पानी देंदे पयो ते केड़े सूरज नूं भगवान आखदे पयो। मैनूं करोड़ां दिखाई दे रहे ने, पर मैनूं दसो ते सही किस दी पूजा कर रहा है। ये सब उस करते दी कृत है। कोट सूर जाके परगास, कोट महादेव अर कवलास। महादेव जैसे योगेश्वर भोले, संत सुभा पता नहीं कितने हैं। कबीर बड़े ने, बड़े ने। कवला पति, लक्ष्मी दे पति, पता नहीं कितने विष्णु ने, कोई एक भगत कबीर। कंठ तक यह शब्द आ गया सी, धन गुरु ग्रंथ साहब का वाह के कबीर का बोले। मैं कह वापस ले जाना ठीक नहीं, थानू सुना रहे। कोट चंद्र में करें चराग, एक चंद्रमा करोड़ा सुर तुएं तीस उजेवे पा, केड़े 35 करोड़ देवत्या दे चक्कर दे पयो। परमात्मा की झूठ लभदे फिरदे ने, इस तरह के देवते पता नहीं कितने ठोकर खाते फिर। देवता जिहदे अंदर ज्ञान का दीवा जल गया, सूझवान पता नहीं कितने ने, कोई एक। कोटक कुमेर भरे भंडार, कोटक लक्ष्मी करे सिंगार। लंबा चौड़ा शब्द मुख्तसर में अर्ज करा। सहस कोट बो कहत पुराण, दर्योधन का मथया मान। जिसने दर्योधन दे मान नू मिट्टी च मिला दिता, पता नहीं कितनिया धरतियां ने ते उन्हां ते कृष्ण जैसे अवतार कितनी दफा आए, पता नहीं कितने। बावन कोट जाके रुमावली, रावण सेना जैते छली। कबीर का शब्द मैं थोड़े सामने किया है। गुरु नानक इसनों बड़े फिलसफाना ढंग नाल बयान कर दिया। पवन उपाय धरी सब धरती, जल अग्नि का बंद किया। अंदरे दे सिर मूंड कटाया, रावण मार क्या वड़ा बया। आसा मल्ला गया, बड़ा खुलासा है। पर ज्ञान कांड दियां गल्लां ने एक कर्म कांडी नूं नहीं ठीक लगणा। ये ऊड़ा ऐड़ा पढ़न वाले दे अगों जे वड्डी किताब रख दिती, बेमैनी है। केते कान महेश केते बरमे, काढ़त गड़िए रूप रंग के वेश। केतिया करम भूमि मेर केते, केते तो उपदेश। पता नहीं ध्रुव नूं उपदेश करन वाले नारद जैसे ऋषि कितने ने, कोई एक। कितने महात्मा बुद्ध जैसे जपीश्वर ते तपीश्वर ने, कोई एक। इसे वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ऐलानिया कह दिता, जो हमको परमेश्वर उच रहे ते सब नरक कुंड में पर। जिहड़ा मैनू परमात्मा आखेगा कुंभी नरक दे जाएगा, मुक्त नहीं होगा। फिर तुसी कौन, थानू की जानी है। मोको दास थवन का जानो, या मैं भेद न रंच पछानो। मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मैं उसका एक निवाणा जया सेवका, दास ओदी गल करने वाला, ओदा ढंडोर ची, इस तो इलावा ओदी गल करने वाला। जो निज प्रभु मो सो कहा, सो कहे ओ जगमा, बस ओदी गल करने वाला, इस तो इलावा कुछ भी नहीं। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते शेख सरफ सूफी फकीर ने प्रश्न किया सी, तुसी कौन हो, अर्थ तुसी आप करना मैं नहीं करने। सतगुरु का शब्द है। जब पुछते हैं तुसी कौन हो, साहब कहते ने मानस मूरत। तुसी कौन हो, इहदा जवाब देंदे ने मानस मूरत। नानक नाम मनुख दी मूर्तियां ते इस मूर्ति दा नाम है नानक। बस इथे तक ही मैं अर्थ करने ने। मानस मूरत नानक नाम करने कुत्ता दर फुरमा। जबान कम जाती है अर्थ करन लगे। कुछ भी अपने आप नूं प्रगटाया नहीं, जाहिर नहीं किया, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। जब ये भाव किस दे अंदर पैदा होता है वो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता। पहले ये पैदा होता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, सब कुछ जान लेंदा। मैं कुछ नहीं हाँ, मैं कुछ नहीं हाँ, इस चीज का जितना गहरा बोध आता है वो सब कुछ हो जाता है। ये भी महज करते हैं। मानस मूरत नानक नाम करने कुत्ता दर फरमान। इस वास्ते सतगुरों ने कोई अपनी तस्वीर की पूजा ना दसी, अपनी मूर्ति की पूजा ना दसी, हट गए एक पासे। और गुरु अर्जन देव जी ने तो इतनी हिम्मत की थी है, जे धिया पुत्र रोक देन ते माया है, जे धन संपदा रोक देवे ते माया है, ते जे इष्ट अवतार भी रोक देवे ते माया है। श्लोक में थोड़े सामने रखा, माया चित भर में माया नहीं चलन देंदी। ते फिर माया दा रूप माया चित भर में इष्ट मित्रेक बांधवे। संबंधियां ने रोक देता है माया, मित्रा ने रोक देता है माया, धन संपदा ने रोक देता है माया, अवतार ने रोक देता है माया। उत्थे ही रुक के रह गए। ये हिम्मत है गुरु अर्जन देव जी। अवतार नु भी माया समझ लेना अगर निरंकार दे मार्ग विच दीवार बन गए, उत्थे ही रुक गए मनुख। गुरु अर्जन देव जी का वाक बड़ा कीमती गाथा दे। माया चित भर में माया रोक देंदी है, किधरे परिवार रोक देंदा है, किधरे धन संपदा रोक देंदी है, किधरे प्रभुता रोक देंदी है, किधरे अवतार रोक देंदे, देवी देवते रोक देंदे, उत्थे ही मनुख रुक देंदा। अवतार ना पावे अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। इष्ट मित्रेख बांधवे। ज्ञान खंडी मनुख नूं सब कुछ समझ आ जाती है। पता नहीं कितने अवतार ने, कितनी तरह दी धरतियां ने, कितने सूरज ने, कितने चंद्रमा ने। ऐसा मनुख कृत नूं वेखदा है पर पुजारी करते दा बनदा है, कृत दा नहीं। कृत दा पुजारी ज्ञान खंडी नहीं है, कर्म खंडी। वो कृत दा पुजारी नहीं होएगा। क्यों? कृत बनदी है ते मिटदी है। सागर दे च लहरां बनदियां ने मिटदियां ने, बनदियां ने मिटदियां ने। कृत कोई भी जो परमात्मा ने बनाई है बन के मिटदी, उहदा खेल है, उहदा तमाशा है। आवन जान इक खेल बनाया। सिर्फ मनुख ही आउंदा जामदा नहीं है, धरतियां आउंदियां चले जांदियां ने, सूरज आउंदे ने चले जांदे ने, चंद्रमा आउंदा चला जांदा है। पता नहीं कितने चंद्रमा मिट चुके ने। जमीन दे च इस वक्त 6 अरब के करीब मनुख हो चुके हैं, अरबां खरबां सूरज ने। हुण मैं अर्ज करा, पता नहीं कितने मनुखां दियां कबरां बन चुकियां ने, चितावां जल चुकियां ने, ब्रह्मांड विच अरबां खरबां सूरज मिट चुके ने, खत्म हो चुके ने। कितने मनुखी बच्चे मातावां दे गर्भ विच ने, पता नहीं कितने सूरज अकाल पुरख दी गर्भ विच ने, अजे प्रगट होणगे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा फरमान, अकाल पुरख की देह में कोटक बिसन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा के ते रव सस कोट जले। पता ना कितने सूरज अजे जन्म लेणगे, कितने अवतार अजे जन्म लेणगे, कितने चंद्रमा अजे जन्म लेणगे। हजारां मनुखां दियां नहीं, अरबां खरबां दियां कबरां बन चुकियां ने। बाबा फरीद कहिंदे जिथे असीं बैठे हाँ उत्थे मनुख दी खाक होनी चाहीदी, जिथे भी बैठे। हुण ते विज्ञान कहिण लग पैंदा जिथे असीं बैठे हाँ 10 बंदियां दी राख खाक होनी चाहीदी। जिस आसन हम बैठे किथे बैस गए, जिथे असीं बैठे हाँ पता नहीं कितनियां दी खाक है, कितने बैठे। अरबां खरबां मनुख मिट चुके ने, अरबां खरबां सूरज मिट चुके ने। लखां मनुखी बच्चे रोज जन्म पै लैंदे ने, आखदी पलकारे दे पता नहीं कितने सूरज नवे जन्म पै लैंदे, कितने बच्चे मातावां दे गर्भ दे च ने, पता नहीं कितने सूरजां ने अजे जन्म लैण, अजे अकाल पुरख दे गर्भ दे च ने। ज्ञान खंडी नूं समझ पै जांदी है, वो कृत दा पुजारी नहीं बनदा, करते दा बनदा। बिन करतार न किरतम मानो। महाराज कहते हैं करतार नो मनो, करतो नो मनो, किरतम नो छोड़ो। ये जो कृत है ये बनती है मिटती है। लहर की पूजा करोगे, पूजा कर दिया करने लहर मिट गई। शरीर नु गुरु मने और शरीर ना रहा तो फिर कल की करोगे, होर शरीर लभोगे। फिर शरीर की सीम है, शरीर बैठा हो किधरे पिंड देच, किसे शहर देच, किसे दिल्ली देच, ते इत्थे विपता पै जाए उन्हों पुकारिए जिन्नी देर देच आवेगा गालिब कहिंदे हो सकदा है साडा भोग ही पै जाए। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। उसनों पुकारो जिथे पुकारो उथे मौजूद होवे, जिथे हर आरा दिए तिथे हर मित सहाय। जिथे उसनों पुकारो उथे मौजूद होवे और हर जगह जो मौजूद है उसे नु पुकारो। सदा अंग संगे अभंगंग विभूते, जिथे हर आरा दिए तिथे हर, किसे जगह दे उदी आराधना करो ते मौजूद है, उते सहायक है। तो ज्ञान खंडी नु ए समझ पै जांदी है, समझ मिली है। ये समझ अखरी नहीं आती, अनुभव प्रकाश आता है। और इस अनुभव प्रकाश की यात्रा द्वारा जब तीसरे पड़ाव पहुंचता है, गुरु नानक ने उसनु सरम खंड के जे सतगुरु ने सोझ दिती, समा दिता, रुचि बनी रही, सरम खंड, करम खंड ते सच खंड की जो व्याख्या धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी बाणी दे की है, भावें एक एक खंड कई कई हफ्ते मंगदा। गुरु नानक देव जी महाराज तौफीक देन, समर्था देन के विचारा मैं थोड़े सामने रख सकां। बुल चुग दी शमा, सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।